श्रीमद्भागवत में ये पांचवें स्कंद की बात से पृथ्वी महाराज की शिक्षा का यह अध्याय है। इनका उपदेश क्या है? पृथ्वी महाराज की कहानी जानते होंगे। पृथ्वी महाराज का कैसे आविर्भाव हुआ? वेण राजा इनका पिता का नाम। लेकिन वो कैसा था? चोरों का सरदार, अनीति पूर्वक जीवन जीता है। उसका पिता का एकमात्र लड़का था हरे कृष्ण। इसके पिता के राज्य शासन दरम्यान वेण चोरी तो करता था, सब कुछ करता था, फिर भी इसका पिता धर्मपरायण होने के बाबत सारा संसार टिक रहा था। इसके राज्य में ऐसी कोई परेशानी या आपत्ति नहीं आई। लेकिन इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ऋषि मुनियों ब्राह्मण वर्ग के सोच में पड़ गए, राज पंडित हैं, इनकी जिम्मेदारी आ जाती है। वो लोग राज्य के कारोबार में सलाह सूचन इत्यादि करते थे और किस ढंग से राजा का कर्तव्य प्रजा के प्रति जो होता है वो भगवान की तरफदारी वाला होना चाहिए, इसके लिए वो अपना फर्ज समझ करके निभाव करते थे। अभी उन्होंने सोचा कि ये राजा तो खत्म हो चुका है और इसका बेटा चोरों का सरदार है, जानते हैं, लेकिन एकमात्र लड़का है, यानी कि चोरों का सरदार एकदम लफंगा होते हुए भी उसमें राजवी लहू बह रहा है, तो अवश्य कम से कम राज्य में अन्य चोरों का उपद्रव तो नहीं होगा, क्योंकि चोरों के सरदार के रख देते हैं तो दूसरे चोर अवश्य दब जाएंगे। ऐसी धारणा से उसको राजा बना दिया, वेण को राजा बना दिया। लेकिन वेण तो इतना नपावट निकला, ऋषि मुनियों की धारणा चौपट हो गई। वो अपने आप को भगवान कहलाने लगा, यानी कि ऋषि मुनियों की भी आवश्यकता नहीं रही। तब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि कुछ करना पड़ेगा। जब कोई लायक व्यक्ति नहीं होता और जबरदस्ती से वो कहता है कि क्या हमें ये होना है वो होना है, चलो बना भी दिया, फिर भी उचित कर्म नहीं करता तो उसे पुनः मुश्चिक भव, फिर से चूहा बना देना चाहिए। वो कहानी पता है? एक साधु था, साधु जंगल में तप कर रहा है, आराम से तप कर रहा है। वो कपड़ा एकमात्र कोपिन होता है इनके पास, और तो कुछ नहीं। तो एक बार देखा एक चूहे ने काट लिया कोपिन, अब पहने क्या? तो उसने सोचा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चूहे को कुछ खाना देना पड़ेगा, तो अपना बचा हुआ कुछ दे देता था कि कपड़ा मैं काट, तो चूहा भी पलने लगा और वैसे दोस्ती हो गई और साधु की शरण में जीने लगा। सही। एक दिन चूहा जाता है बाहर तो सामने बिल्ली आई, बिल्ली देखकर भागा, क्योंकि चूहा बिल्ली को देखकर अपनी मोथी समझता है। इसीलिए बाघ और साधु की गोद में आकर बैठ गया कि साधु महाराज बचाओ। तो साधु के क्या है कि देखो ये बिल्ली मुझे मारने आई, तो तू क्या चाहता है? मरना नहीं चाहता क्योंकि ना, लेकिन तू चूहा है वो बिल्ली है तो मारेगी, तो मैं कैसे रक्षा करूं? हाँ आप मुझे बिल्ली बना दो तो रक्षा हो जाएगी, बिल्ली बिल्ली करो तो खाती नहीं। तो चूहा के चलो बिल्ली बन जाओ, तो बिल्ली मियाऊ मियाऊ करने लगी और दूसरी बिल्ली ये बिल्ली को देखकर चली भी गई। लेकिन ये बिल्ली बाई चली फिर से घूमने फिरते तो कुत्ता देखा। अभी बिल्ली और कुत्ते में बैर भाव होता है और कुत्ता बड़ा होता है बिल्ली छोटी होती है, इसलिए बिल्ली समझी कि अब तो गई काम से। फिर से आई साधु के गोठ में बैठ गई क्योंकि ये बचाने वाला है। तो उसकी मर्यादा समझने की ये है, मैं यदि बिल्ली बन जाऊं या कुत्ता बन जाऊं मेरा काम हो जाएगा। ज्यादा अकलमंदी नहीं, दूसरों की संभाल कैसे करना है वो जानते नहीं, सिर्फ अपनी संभाल कर पाए तो ठीक है। तो इस बार भी उसने कहा कि मुझे कुत्ता बना दो तो मेरा प्रश्न का समाधान हो जाएगा। तो साधु ने कहा कुत्ता बन जा। अब कुत्ता टहलने जाता है तो शेर देखा, शेर पीछे पड़ा। साधु कहे अब भाई क्या है, कुत्ता बनने में भी परेशानी चालू है क्या? क्या हाँ देखो ये वो शेर है, तो तुझे क्या चाहिए? मुझे शेर बना दो, शेर बनते मेरे प्रश्न मिट जाएंगे। तो साधु कह रहे चलो शेर बन जाओ भाई, हमें तो क्या है आशीर्वाद ही देना। अभी शेर का पालन कौन कैसा कर सकता है, साधु थोड़ा कर सकता है। वो देखने लगा कि ये तो कुछ खाना देता ही नहीं, तो कहां तक भूखे रहेंगे? तो शेर कहते हैं साधु मैं तुम्हें खाऊं। अरे मेरा शेर मुझे म्याऊं करने वाला, पहले तो म्याऊं करता था अब तो खाने के लिए तैयार हो गया। जब पुनः मुश्चिक भव, पहले फिर से चूहा हो जा। तो ये वेण राजा जिसने उसे राजा बनाया उसे ब्राह्मणों को ही पीड़ित करने लगा और कहने लगा जबरदस्ती करने मुझे, मैं भगवान हूं तुम्हारा, यह ये यज्ञ इत्यादि सब कुछ त्याग कर दो, धर्म पालन करने की कोई आशा नहीं, मैं जो कहूं वही धर्म है। तो ऐसे निष्ठुर राजा वेण को कहो के चल खत्म कर देते हैं, तो मंत्रोच्चार से उसको मार दिया। राजा ये वेण को खत्म कर दिया, अब कौन राज करेगा? उसकी तो कोई प्रजा थी ही नहीं। तो वेण राजा के शरीर के अंग सर्वप्रथम नहीं जंगा गोली तो इसमें से एक काला हफ्सी जैसा निषाद निकला। और जन्म उसका वो पैदा होते ही चोरी लूटफाट करने लगा उसके पिता की जैसे। तो ऋषि मुनियों ने भगा दिया, वो अफ्रीका जाकर बैठा काला हब्सी, यहाँ के सब चोरों ऐसे में क्योंकि बहुत सारे भगत भी हैं वहाँ और हम ही जाते हैं, हम कभी नहीं कहते ये स्टोरी। तो निषाद को भेज, और बाद में उन्होंने सोचा कि जंगा घोलने से फायदा नहीं, तो बाजू हाथों की बाजू घोली, तो उसमें से पृथु महाराज और अर्ची भगवान और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी दोनों साथ साथ में, दोनों पिता। अब पृथु महाराज आते ही इन ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो तेजस्वी भगवान का अवतार है, तुरंत गुणगान गाने शुरू कर दिए, भगवान के। तो पृथु ने कहे रोको 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 भैया, मैंने तो कुछ करके बताया ही नहीं, पहले से ही हमें ऊपर चढ़ाने लगे क्या, मुझे कुछ तो करने दो, बाद में मैं अपनी लायकात के अनुसार गुणगान स्वीकार कर सकता हूँ। जिनका गुणगान गा रहे हैं इनको भजो, मैं तो इनका अवतार हूँ और अंशावतार ही हूँ, इसमें इतना सारा बोलने की क्या आवश्यकता है मेरे लिए। तो ब्राह्मणों ने देखा ये सही बात है। तो पृथ्वी महाराज ने अपना कर्तव्य जिस अवतार हेतु अवतार का हेतु था वो कर्तव्य परायण थे, उन्हें तुरंत तीर और बाण तैयार किए और पृथ्वी वेण महाराज के परिताप से इतनी संतप्त हुई थी कि उसने अनाज पकाना बंद कर दिया, गैयाएं दूध देने बंद कर दी और त्राही त्राही पुकार, लोग मरने के लिए दिया हो गए, कभी खत्म। तभी तो पृथ्वी महाराज की उत्पत्ति की आवश्यकता हुई थी। तो जब पृथ्वी ने ये वेण महाराज के अत्याचार से सारा धन धान्य देना बंद कर दिया, वो उसकी स्वच्छंदता भगवान का नीति नियम है, भगवान तो कहते पृथ्वी तो माता है, तेरी जो प्रजा है इनका प्रजा पैदा करते तेरा कर्तव्य खत्म नहीं होता, उसका पूर्ण रूप से पालन करना यानी कि उसको धन धान्य से संपन्न करना होता है, किसी के पाप का बोझा दूसरों पर क्यों डाले, ये तेरा अधिकार नहीं, वो भगवान का अधिकार होता है तेरा नहीं। फिर भी पृथ्वी थोड़ी मनमानी करने लगी, उसने गाय का स्वरूप धारण किया, वो कहते कि मुझे कैसे पता कि ये भगवान का अवतार है। तो पृथ्वी महाराज ने तीर बाण तैयार किए और ये गैया के पीछे दौड़े, गैया भागती ही रहो, पृथ्वी इनका पीछा पकड़ते ही रहे। और बहुत समय के बाद उसने देखा कि पृथ्वी महाराज सचमुच कोई मामूली आदमी तो है ही नहीं, और इनका तेज इनका कर्तव्य प्रायण था, ये देखकर वो शरण में आई, कहने लगी कि चलो मैं आपके शरणागत हूं, अब मारने के लिए प्रयत्न है, बल्कि आप बताओ कि मैं कैसे करूं, मैंने वेण के अत्याचार से ये सब किया है। उसने इतना परित्राप फैलाया था, उसने ही सारा प्रदूषण किया है, ये तो जिम्मेदार वो है, मैं जिम्मेदार नहीं। और भगवान आप वो जिम्मेदारी अदा करने आए हैं तो आप मुझे बताओ, मैं आपका सहयोग देंगे। इसी तरह पृथ्वी ने उसे आदेश दिया, चलो तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जब तक हम हैं वेदों के अनुसार हम सारा राज्य पुनः स्थापित करेंगे पृथ्वी पर, और तो निश्चित रूप से मेरे संरक्षण में है। तब पृथ्वी मानी और उसने धन धान्य पैदा करने के लिए दिया। तो ब्राह्मण लोग जो उनके लाने वाले थे वो काफी प्रसन्न हुए। पृथ्वी महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 में करने जाते थे तो इंद्र को ईर्ष्या आ गई कि ये तो मेरी सत्ता हड़प कर लेगा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र का स्थान प्राप्त कर सकता है, ये 99 तो कर चुके हैं। तो इंद्र ने पॉलिटिक्स चालू कर दी, पृथ्वी महाराज के यज्ञ में विघ्न डालने लगे, घोड़ा ही चुरा जाते, जिसका बलि चढ़ाना है उसको ही चुरा जाते, होने ही नहीं देता। तब भगवान को मध्यस्थी करनी पड़ी, मध्यस्थी यानी मीडिएशन करना पड़ा। तब भगवान ने कहा पृथ्वी मार्गोली थी ये 100वें यज्ञ को, तो कहीं इंद्र बनना चाहता नहीं तो फिर क्यों करता, कि सही बात है, क्योंकि मैं यदि 100वां यज्ञ करूं तो उसकी सत्ता चली जाएगी, मैं लायक बन जाऊंगा, लेकिन मैं तो भगवान का अंश हूं, आपका ही अंश हूं, और आप आपके कर्तव्य के लिए अवतरित हुआ हूं। तो वो मान गए। तो पृथ्वी की ये महानता देखकर इंद्र आया, शरणागत हुआ, भगवान भी आए, पृथ्वी का जय जयकार करने लगे कि देखो ये भक्त, इनकी भक्ति कितनी बढ़िया है। भगवान के अवतार भी भक्त के रूप में आते हैं और साक्षात भक्ति करके बताते हैं। कितने ऐसे अवतार हो गए जो भक्त की भांति हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन? और कौन? नहीं, भगवान के अवतार हरिदास ठाकुर थोड़े भगवान के अवतार थे। उन्होंने भक्ति सिखाई ना, ना। कपिल देव पर लेकिन तो स्वयं भगवान है, अपनी माता को शिक्षा दी उसने। वो भगत कहाँ है, वो तो नास्तिकवाद। हाँ, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन विष्णु के सीधे अवतार नहीं, भगवान की शक्ति का आवेश आकर अवतार हुआ। वैसे तो व्यासदेव भी शक्ति अवतार है, गौतम बुद्ध भी शक्ति आवेश अवतार है, भगवान की शक्ति का आवेश, भगवान का स्वयं का नहीं। कौन? दूसरा कौन? परशुराम? परशुराम नहीं, परशुराम भी शक्ति आवेश अवतार। और कौन? बलराम, भगवान कृष्ण के महान भक्त के रूप में आते हैं। बलराम भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति कैसे करना है वो सिखाते हैं। शेषनाग के रूप में इनकी शैया बनकर आते हैं, जनेऊ शेषनाग का चिन्ह है, भगवान की छाता बनते हैं, भगवान के चरण भी दबाते हैं बलराम। भगवान की इच्छा का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग भी नहीं लेते, चले जाते हैं। दुर्योधन मरेगा और भगवान की इच्छा है तो मैं क्यों बीच में विघ्न करूं, ऐसे चले जाते। तो बलराम भी विशुद्ध भक्ति सिखाते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी भक्ति सिखाते। तो भगवान के अवतार भगवान कौन है इनका परिचय भी कराने आते हैं, भगवान के अवतार। भगवान एक होते हैं जो अवतारी होता है, बाकी के सब अवतार हैं तो इनके ही अंश या शक्ति या कला का आवेश होता है, तब ये अवतारे कहलाते हैं। सभी अवतारों की एक सरीखी पूजा भी नहीं करते हैं, विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है, लेकिन सभी की एक सरीखी पूजा भी नहीं होती, जिसमें राम और कृष्ण की महत्ता ज्यादा रखते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो पूर्णता का परिचय इनके अपने चरित्र के द्वारा कराता है वो भगवान कहलाता है। बाकी अंश कला रामादि मूर्ति शुकला च नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं जानामि। तो यहाँ प्रथम महाराज भगवान का शक्ति का आवेश लेकर हमें शिक्षा दे रहे। तो सर्वप्रथम प्रथम महाराज को पैदा करने वाले ये ब्राह्मणों को संबोधित करते हैं और उनकी उनके गुणगान गाते हैं। प्रथम महाराज ब्राह्मणों के गुणगान गाते हैं। ब्राह्मणों के गुणगान गाने की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण या वैष्णव, यहाँ प्रभुपाद जी ब्राह्मण शब्द का अर्थ वैष्णव, जो भक्त के रूप में है, ऐसे ब्राह्मण हमारे यहाँ हम स्मार्त ब्राह्मण भी देखते हैं, वो सिर्फ कर्मकांडी, वो भक्त की कोटि में आते ही नहीं, वो सब पैसे के लिए ब्राह्मण का धंधा करते हैं, शायद सात्विक भाव में भी नहीं रहते, वो भी बिजनेस करते हैं। तो इन शिक्षाओं में कई शिक्षा बहुत स्पष्ट, ब्राह्मणों का अभिवादन क्यों करना चाहिए? ब्राह्मण समाज के मत्था होता है, समाज भगवान का अंग जैसा बताया है, और समाज में जो जो वर्णों और आश्रम द्वारा सूचित कर्मों करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जीवन न्योछावर करता है, तो उसका धर्म, जो वर्णाश्रम धर्म है, वो पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, सिद्ध होता है। कोई भी वर्ण कोई भी आश्रम में अपने अपने सूचित कर्म करने से भगवान की प्रीति यदि प्राप्त करें तो सफलता, नहीं तो निष्फलता। हम वर्णाश्रम धर्म को ठीक नहीं पालन कर सकते अन्यथा। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। हरितोषणम ये सर्व सिद्धि है, भगवान का संतोष देखना है। हमें हम जो हैं, जो वर्ण जो आश्रम में हैं, क्या हमारे ऐसे जीने से भगवान को संतोष होता है? अरे भाई, भगवान को संतोष कब होगा हमें क्या मालूम, पहले हमें तो संतोष मिलना नहीं दो। ऐसे करके जो जीने वाला है तो बहुत कंजूस है, एक तो वर्णाश्रम धर्म का हेतु जानता नहीं, दूसरी ओर से अभी भी ईर्ष्या चालू है। भगवान ने मौका दिया है कि भैया अकेला नहीं आ सकता है, तो दो बन कर आ, तो गृहस्थी बन, ये कर वो कर, और लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन कर, मेरी प्रति करने के लिए पालन करना, हेतु क्या है पालन कर? हम यदि स्वार्थ के लिए पालन करते हैं तो सारा चौपट हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति परिवार में अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो क्या परिवार टिकता है? नहीं, दो का भी परिवार नहीं टिकता, सभी स्वार्थी जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन सब में एकता बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति, परम व्यक्ति मध्य में होनी चाहिए, जिसके प्रसन्नता के लिए यदि हम अपने अपने सूचित कर्म करते रहेंगे तो बेड़ा पार, सारे परिवार का बेड़ा पार, उसे कृष्ण भावना मिलती है। सामाजिक रचना का कोई विरोधी नहीं, लेकिन हमें जिस ढंग से संसार का पालन करना है, सांसारिक धर्मों का पालन करना है, वो पालन करने में हम जब पीछे पड़ते हैं तब समस्या ही समस्या खड़ी रहती। तो पृथ्वी महाराज इसलिए ब्राह्मणों को मत्था कहते हैं कि जो मार्गदर्शन दिलाया करें अन्य तीन वर्णों के लिए, क्षत्रिय बाहु, वैश्य पेट और शूद्र बाहु। तो ये चारों एक दूसरे को मिलजुल कर एक ही व्यक्ति यानी के लिए यदि काम करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थ, स्व यानी खुद में स्थिर, हम तो कहते कि स्वस्थ यानी हेल्दी है, तंदुरुस्त, स्वस्थ कहते हैं, स्व यानी कि खुद, स्थ यानी स्थिर, अपने आप में अपने मूल स्वरूप में जो स्थिर कहलाता है वो स्वस्थ है, बाकी सब बीमार। बीमारी ये है, हम खुद में स्थिर नहीं, हम शारीरिक स्वस्थता चाहते हैं, आत्मा की स्वस्थता चाहते नहीं। तो पृथ्वी महाराज इन ब्राह्मणों का बहुत अभिवादन करते हैं। आजकल कौन ब्राह्मणों को अभिवादन करता है? क्यों? क्यों ब्राह्मण ब्राह्मण रहे ही नहीं, सही ना? और फिर भी वो रीत रिवाज छोड़ते नहीं, चलो आज ये है, चलो दो चार ब्राह्मण को बुलाकर खिला दो तो भाई, लेकिन कहाँ ढूंढने जाएं? अरे गली में हम जानते हैं कि ये ब्राह्मण का लड़का है, लेकिन ब्राह्मण है कि नहीं तो इनके वो पता नहीं। हमें क्या काम है? हमें तो ब्राह्मण से काम है ना, जैसा वैसा ब्राह्मण। ऐसे हम चला लेते हैं है? लेकिन ब्राह्मण होना और ब्राह्मण के मुख में से जो सुनना होता है तो वो भगवान की प्रतिष्ठा ही सुनना होता है। भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूं, तो प्रथम महाराज समझाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म भोजन कराने से भगवान प्रसन्न रहते हैं। कैसे? ब्रह्म भोजन कराना है, ब्रह्म भोजन मामूली तो नहीं है, है? जो आत्मा को संस्पर्श करने वाला है, भगवान को संस्पर्श करने वाला ये भोजन है, जो भगवान स्वयं ब्राह्मणों के मुख से खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी महाराज समझाते हैं, क्योंकि अध्यात्म की स्थिति बनी रहने की पूरे पूरी संभावना है, इसीलिए ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। अध्यात्म की स्थिति बनी रहनी चाहिए कोई भी कर्तव्य में। भगवान को पहुंचाने वाली तो अध्यात्म की स्थिति होती है, यदि अध्यात्म की स्थिति नहीं होती है, बरसाना गए आपके पीछे ब्राह्मण पड़े थे, मैं यहाँ 100 ब्राह्मण यहाँ रह रहे हैं, 100 रुपया दे जा हम सब भोजन कर लेंगे, लोग चढ़ते हैं, अरे कोई भगवान की तो बात करता नहीं, ये तो पान पराग इत्यादि चबा कर ये कह रहा है। तो ब्राह्मण हमें शंका बैठती है कि ये पहुंचाएगा क्या, लेकिन ब्रह्म भोजन कराने के लिए वो आग्रह करता है, पीछे पड़ता है, अरे दे जा दे जा दे जा, सबको सिर्फ इसी तरह पंडागिरी में पीछे पड़ते हैं, ब्रह्म भोजन करा, ब्रह्म भोजन, नहीं तो वो बताएगा कि क्यों कराना चाहिए, क्योंकि वो पहुंचाने की गारंटी नहीं देता कि ये भगवान को प्रसन्न करने वाला है, कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, वो नहीं कह सकता, उसमें हिम्मत ही नहीं, वो प्रचार करेगा ही नहीं, शिक्षा देगा ही नहीं। तो ये हालत कलयुग में है, लेकिन पृथ्वी महाराज कहते हैं कि इसकी आवश्यकता समाज को, यानी कि समाज में जो जो बताया गया है उसके पीछे भगवान एक सर्व कारण कारण के रूप में बने रहते हैं। इसीलिए भगवान को यदि पहुंचाना है तो ब्राह्मण के मुख से पहुंचा जाता है, वो प्रतिनिधि। देखो यहाँ पृथ्वी महाराज को उत्पन्न किया उन्होंने मंत्रोच्चारण द्वारा, और वही पृथ्वी महाराज मना करते हैं कि मेरे गुणगान मत गाओ, मैंने कुछ करके नहीं बताया, और बाद में वो कहते हैं कि आप सब कुछ, आप ही ब्राह्मण लोग, आपसे ही तो धर्म टिकता है। इतनी सराहना ब्राह्मण वर्ग की या वैष्णव वर्ग की करते हैं पृथ्वी महाराज। तो हम थोड़े श्लोक देख लेते हैं कि इनकी शिक्षा में चलो पृथ्वी महाराज के उपदेशों में पृथ्वी महाराज कहते हैं अपने समक्ष जो हरे कृष्ण जो नगरजन इत्यादि ये यज्ञ में सम्मिलित हैं उनको सुनाते हैं मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दोनों महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे अतः ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। महाराज पृथु अद्वितीय राजा थे और इस भूमंडल के सातों द्वीपों शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का कोई यदि उल्लंघन कर सकता था तो वे ब्राह्मण तथा वैष्णव ही थे। पृथ्वी महाराज के आदेशों में यदि कुछ पालन नहीं करना तो वो ब्राह्मण या वैष्णव ही हो सकता है। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया जिसमें ऋषि ब्राह्मण स्वर्गलोक के देवता तथा बड़े बड़े राजर्षि एकत्र हुए। उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथायोग्य पूजा की। फिर वे सभा के मध्य में खड़े हो गए हैं ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनके रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान थे। उनके नाक की सीधी मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख के दांत सुंदर ढंग से लगे थे। महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनके उदर बल पड़े हुए होने के कारण वटवृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी उनके जांग सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उबड़े हुए थे। उनके शीर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर और घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में चादर ओढ़े थे। क्योंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े जिससे उनकी प्राकृतिक शारीरिक शोभा दृष्टिगोचर हो रही थी। उन्हें काला मुख चर्म पहने तथा उंगली में कुश वलय पैती के देखकर अच्छा लग रहा था क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि सम्मत कृत संपन्न कर चुके थे। सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए महाराज पृथु ने ओस से नभ आकाश में तारों के समान नेत्रों से उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा। महाराज पृथु का भाषण अत्यंत सुंदर आलंकारिक सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर था। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सके। परम सत्य के बारे में ही पृथु महाराज बोलने का आग्रह रखते हैं। राजा पृथु ने कहा है सभासदो आप सबका कल्याण हो कि जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हैं वे मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो वह भद्र पुरुषों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करें। राजा पृथु ने कहा कि भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूं और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उनसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित करने, सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूं। राजा बनने का हेतु क्या है वो स्पष्ट है। महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मुझे वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित अभिषिक्त प्राप्त हो सकेगा। यह गंतव्य निश्चय ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्य है जो समस्त नियति का दृष्टा है। इसका मतलब ये है कि पृथु महाराज की इच्छा में जो सिद्धि की प्राप्ति है वो भगवत प्रेम प्राप्ति की बात कर रहे हैं। वो भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ संपादित नहीं करते हैं। जो राजा अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर उनसे केवल कर वसूलता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपत्ति भी जाती रहती है। जो राजा सिर्फ कर वसूल करना ही जानता है लेकिन प्रजा को भगवत परायण करने में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, तो उसकी अवगति ही होती है, सारे राज्य की अवगति होती है। सरकार की तो होती है, तो हमारे यहाँ चार साल में सरकार क्यों बदल जाती है और हर दूसरे साल में इलेक्शन क्यों लगता है? ये क्योंकि प्रजा की अवगति उनके दुष्कर्मों से उनको ऐसी राजा को भी भोगतनी पड़ती है। कर का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, वो तो करता नहीं, ऐसी सरकार वैसे पलट मारती है। पृथु महाराज ने कहा कि हे प्रजागण, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसी के साथ अपने हृदय में भगवान का निरंतर कीर्तन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाला देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से ही भोग्य होता है। माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके, अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं? उसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य होती है अपितु मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये महाजनों के कदम में चलने वाला है पृथु। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी श्री भगवान में विश्वास करने वाले थे। यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दोहित्र तथा मेरे पिता वेण जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अथवा स्वर्ग का एकमात्र दाता श्री भगवान ही है। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मनों में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो कर सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाली गंगा जल का जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इसी विधि में मन तुरंत स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे कृष्ण चेतना का विकास होता है। जब भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो उसका सारा अज्ञान या मानसिक चिंतन दूर जाता है और उसमें वैराग्य दिखने लगता है। तब यही संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता, क्योंकि यह तीन प्रकार के तापों यानी क्लेशों से पूर्ण है। संसार तीन तापों से पूर्ण है। पृथ्वी महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तुम सबको अपने मन वचन तथा देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्ति पर कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहो, तब तुम्हें निश्चय ही अपने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। भगवान दिव्य हैं, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है जिसका कोई भौतिक भेद नहीं है, किंतु फिर भी जब बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्व अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञ को स्वीकार करते हैं। श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे प्रकृति काल अभिलाषा तथा धर्म के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतना विकसित होती है। जिस प्रकार के विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक ही अग्नि विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती है। श्री भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं, वे परम गुरु भी हैं। इस पृथ्वी तल को जो नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर सकते हैं, वे मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुमको सबको धन्यवाद देता हूँ। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे लक्षणों के द्वारा स्वयं ही महामंडित होते हैं। इन दिव्य रुद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करें और उनका अपमान करने से बचे। शारीरिक ताकत से हम ब्राह्मणों की ये बौद्धिक ताकत और अध्यात्म की ताकत पर प्रहार करने का प्रयत्न नहीं करते। पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी श्री भगवान ने अपनी ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमल की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। भगवान स्वयं की प्राप्ति इन महान भक्तों के चरण कमलों की धूली मत्थे पर चढ़ाते ही होती है, क्योंकि भगवान को स्पष्ट रूप से हमें वो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। अन्यथा भगवान सीधे सीधे तो उपलब्ध होते ही नहीं। सदैव मुक्त रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों के लिए अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंश की सेवा करते हैं, क्योंकि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये उनको प्रिय हैं। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए उनके यज्ञों की संतुष्टि की जाती है। यद्यपि श्री भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितना कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में। भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, वैसे अन्य कोई भेंट यदि दे तो भगवान स्वीकार नहीं करते। उनकी संतुष्टि जो विद्वान साधुओं तथा भक्तों से के मुख से स्वीकार करने में वो झिझकते नहीं, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। हमेशा भक्त अपने भगवान के लिए जीता है और भगवान अपने भक्त के लिए जीते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायंती मद भक्ता। न मैं वैकुंठ में हूँ न योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। ये भगवान का कथन। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत और सुरक्षित है, क्योंकि वेदों के आदेशों के श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान पूर्वक स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित रहता है। हे समुपस्थित आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन में अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूली धारण करता रहूं। जो ऐसे चरण धूली धारण करता है वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण होता है। जो भी ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेता है उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ये गुण है सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय। यह मेरी यह चाह है कि भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल गौओं तथा मुझ पर प्रसन्न रहे। इसी तरह पृथु महाराज ब्राह्मणों का अभिवादन करते रहे और सराहना करते कहते हैं कि हमें इन ब्राह्मण वैष्णव की चरण धूलि मत्थे पर चढ़ाकर भगवत प्राप्ति। श्रीमद् भागवत में ये पुष्टि हुई है कि नैषामतिम तावत उरुक्रमांग्री। उरुक्रम यानी भगवान जिसके क्रम बहुत उत्तम होते हैं, बड़े होते हैं। उरुक्रम वो वामन अवतार का नाम है, वामन देव उरुक्रम कहलाते हैं, क्योंकि है तो छोटा बच्चा लेकिन जब तीन कदम भूमि मांगी तो सारा विश्व सारी प्रकृति पर वर्चस्व जमा। दो पांव है, तीसरा कहां रखूं कहते हैं। बलि महाराज सोच में पड़ गए, अब तो कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने अपने दादा प्रहलाद महाराज से की ओर देखा तो प्रहलाद महाराज ने इशारा किया, अरे तेरी खोपड़ी तो है दे दे, नहीं तो अहंकार जमा रहेगा। तब बलि महाराज ने कहा कि भगवान अब मेरा मत्था ही बाकी है, इन पर आपके चरण कमल रखो। और भगवान के शाबाश, भगवान के चरण कमल मत्थे पर पड़े तो कहना ही क्या। तो ऐसे ऐसे विशुद्ध वैष्णव की चरण कमल की धूले कोई सीधी नहीं मिलती तो उठाकर चढ़ाते हैं, सही ना। तो नैषामतिम तावत उरुक्रमांग्री, भगवान के चरण कमल पर हमारी मति चिपकेगी ही नहीं जब तक। लेकिन क्यों नहीं चिप जाएगी? क्योंकि जो अर्थ के लिए, जो हेतु के लिए, क्या हेतु है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का हेतु है तो नैषामतिम तावत उरुक्रमांगी, तावत यानी कि जब तक ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ऐसी भाषा है। यावद और तावत, तो नैषामतिम तावत उरुक्रमांगी। न स्पृश्यति यदर्थम उपगमम, जो यद अर्थ जो हेतु के लिए हम धारणा नहीं करते और अनर्थों का नाश नहीं करते, नहीं तो अनर्थ हमारी धारणा को आगे नहीं बढ़ाता। तो हमारी धारणा को शुद्ध करने के लिए पहले अनर्थ हटाना पड़ता है। तो न स्पृश्यति, यानी कि ये तो छूता भी नहीं, ऐसा प्रश्न उठने की कोई संभावना ही नहीं कि हम भगवान के चरण कमल प्राप्त कर सके मथे पर। तावत जब तक मही असाम यदि पादरजोभिषेकम, मही असाम, मही असाम, ये ब्राह्मण वैष्णव जो विशुद्ध भक्त होते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं और इनकी शरणागत होते हैं और भगवान के जैसा समझने और भगवान की तरफदारी वाला कर्तव्य करने के लिए वो कम से कम सात्विक भाव में रहकर अध्यात्म, यानी कि ये तो भक्त हैं, तो मही असाम होते हैं। मही असाम यानी ग्रेट डिवोटीज। मही असाम यदि पाद रजोभिषेकम, मही असाम कैसे होने चाहिए वो अगले स्टांजा में कहा है, लेकिन इनके चरण कमल की धूली का अभिषेक जब तक कोई नहीं करता तब तक। लेकिन वो कौन है कि मही असाम के निष्किंचना नाम न वृणित चार, ये निष्किंचन, निष्किंचन यानी अकिंचन, प्रभु का तो नाम सुना है, अकिंचन और निष्किंचन है दोनों एक होते हैं, यानी वो खोखला होता है, उसके पास कोई लगाव नहीं होता, यानी विरक्त, डिटेच्ड, निष्किंचना नाम न वृणित जावत। वो जब तक कृपा नहीं करता तो मही असाम वो पादर जो अभिषेकम भी नहीं मिलती, और तब तक भगवान के चरण कमल की शरणागत होने की भावना भी नहीं कर सकती। अपने आप में हम मान लेते हैं कि क्या हो गया, मैं तो भगवान को शरणागत हूं, लेकिन न तो कोई मही असाम से परिचय है, न तो इनकी चरण दुबी मत्थे पर चढ़ाई है, न तो इनका कहा मानते हैं, न कुछ। कभी कभी लोग बहुत भावुक होते हैं, इतना धर्म पूजा पाठ करते रहते हैं और अपने आप को भगवान को शरणागत मान लेते हैं, वो भगवान भी नहीं होता शायद, ये बाबा वो बाबा का भी फोटो हो रखे थे कि मैं तो पूर्ण शरणागत हूं भगवान को। भगवान को शरणागत होना मुश्किल है जब तक मही असाम यदि पाज रजो अभिषेक नहीं होता। तो प्रथम महाराज कहते हैं कि क्यों, क्योंकि ट्रांसेंडेंस इज रिटेन्ड इन दिस ब्राह्मण क्लास, सुरक्षित है। अध्यात्म का व्यवहार इस ब्राह्मणों में सुरक्षित है, इसीलिए ब्रह्म भोजन कराते भगवान खा लेते हैं, ब्रह्म भोजन कराते भगवान खा लेते। ये ब्राह्मणों को क्यों खिलाओ, गरीबों क्यों खिलाओ, यूं कह देंगे, लेकिन गरीबों को खिलाओ खिलाते भगवान तरफ पहुंचता क्यों नहीं, क्योंकि वो बेचारा जानता नहीं कि इसके पीछे क्या हेतु है। हम लोग खिचड़ी बांटते हैं, उसे पहले हरि कीर्तन कराते हैं, वो जानते हैं कि चलो खिचड़ी मिलेगी, लेकिन उनको कोई कहता नहीं कि देखो अब आप हरि नाम से शुद्ध हो रहे हैं, तो भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान ने जैसी स्थिति में आपको रखा है उसी स्थिति में फरियाद नहीं करना चाहिए, इनके भक्त बने रहो, उनके गुणगान गाते रहो, हरे कृष्णा महामंत्र करते रहो। लेकिन जैसे कोई भक्त कृपा नहीं करता तब तक वो खिचड़ी ही खाता रहेगा, भगवान तरफ भी पहुंचेगी भी नहीं। भगवान तो आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति में अपना कर्तव्य कैसे पहुंच पाते, ब्राह्मणों के मार्फत ही पहुंच पाता है, क्योंकि वो लोग अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा में जुड़ते इनका आध्यात्मिक स्वरूप दे देते हैं, इसलिए भगवान खुश होते हैं। तो ये कहा, ये पृथ्वी महाराज कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी महाराज को उत्पन्न ये ब्राह्मणों ने किया है, वो सारी पृथ्वी की सुरक्षा चाहते थे, भगवान को बुलाते थे और अभी प्रकट हुए, तो पृथ्वी महाराज ने अपने कर्तव्य परायणता द्वारा ये बोध दिया है, तो इन ब्राह्मणों की सराहना करते पृथ्वी महाराज ने सारे समाज को उपदेश दिया और सारा समाज बाद में वाह वाह करने लगा कि हा पृथ्वी महाराज आप सही हो, आपने जो ये वक्तव्य दिया हम सबको अनुकरणीय है, आप आदरणीय है, आप हमारे राजा बने रहो। तो राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा को भी भगवत परायण बनाना और भगवत धाम पहुंचाने के लिए राज्य का, सिर्फ कर देते रहो और आप जो करना चाहे वो करते रहो ऐसा नहीं, या सरकार को रिश्वत देकर अपनी मनमानी करते रहो, सत्यानाश होता है। ये सब बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्या करते हैं, सरकार के अधिकारियों को खरीद लेते हैं ना, बड़े बड़े रिश्वत देकर खरीदते हैं, सुना नहीं ये घोटाला निकला वो घोटाले में क्या क्या बाकी नहीं रखा, घास का भी घोटाला किया, बोफर्स का तो घोटाला किया, अभी घास का भी कर रहे हैं, जो गाय को खिलाते नहीं वो चारा खुद ही खाने लगे, यानी कि चारा का कन्वर्जन करके वो पैसे बढ़ाते, घास का घोटाला। तो ये हालत है, ऐसे ऐसी सरकार किसी की सुरक्षा नहीं देती, न तो भगवान की तरफ ही हमें ले जाएगी, ये तो नास्तिक सरकार है। भारत प्रजासत्ता का कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वप्रथम ये बताया कि भारत गणतंत्र का सारा व्यवहार बिन सांप्रदायिक रहेगा, यानी कि धर्म निरपेक्ष रहेगा, जहां धर्म की अपेक्षा ही नहीं, तो नास्तिक हो गए हैं, तो सरकार नास्तिक है, आस्तिक सरकार नहीं है। इसलिए मुसलमानों की वोट बैंक को सराहना करके ये अनामत धारा देखो कितना बहकाया, कल भी तो अखबार में आया था ना, रिजर्वेशन कोर्ट में हाई कोर्ट में स्टे ला दिया, तो ये जो सरकार प्रजा को पीड़ित करती है उसकी संरक्षा का कोई प्रावधान नहीं रहती, तो ये सरकार नहीं है, ये असुर राज्य है। तो इस ढंग से पृथ्वी महाराज की शिक्षा अपने वर्णाश्रम धर्म के लिए बहुत आवश्यक है, जहां मत्था ब्राह्मण वैष्णव कहलाता है, उनका एक ही कारण, ब्राह्मण क्यों, ब्राह्मण वैष्णव क्यों, भगवान को ऐसे वैसे प्रिय हो जाते हैं, भगवान अध्यात्म की स्थिति में होते हैं, इनको अध्यात्म की स्थिति में पहचानने वाला ही तो ब्राह्मण कहलाता है, जो सारे अन्य तीन जो वर्ण है इनको आगे बनता है, इनका गुरु बनता है, इनको उपदेश देता है अध्यात्म के बारे में। तो जो अध्यात्म की सुरक्षित व्यवस्था बनाकर भगवान की सेवा में जो अपना कर्तव्य है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जो अध्यात्म का परिचय भूल जाता है, सिर्फ घंटी बजाकर आरती करता है, तो वो ब्रह्म बंधु कहलाता है। उनके पिताजी ब्राह्मण होंगे लेकिन वो बेटा नहीं, लेकिन परिवार से जुड़ा है तो ब्रह्म बंधु हो गए। ये तो सर्व पहले प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद में भी दिया गया है, शमिक ऋषि का बेटा ब्रह्म बंधु कहलाता है। शमिक ऋषि तप कर रहे थे, परीक्षित महाराज आए वहां, परीक्षित महाराज तो भक्त हैं, फिर भी उस समय उसकी स्थिति थोड़ी विह्वल थी क्योंकि थके थे और अपने जो साथियों से अलग हो चुके थे। वो समझते थे कि चलो ये ब्राह्मण आदर सत्कार तो करेगा, लेकिन ये तो ध्यान में बैठा है, उनको पता ही नहीं कि परीक्षित महाराज आए हैं। तो परीक्षित महाराज को थोड़ा क्रोध आ गया, क्रोध में एक सांप मरा हुआ था वो उठाकर उसके गले में दे दिया, सही बस, और वहां से वो चले गए। इतने में वो श्रृंगी आया, शमी कृषि का बेटा, और अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर काफी रोने लगा, चिल्लाने लगा और मेरे पिता का अपमान किया है और उसको ऐसा श्राप दे दिया। ये ब्राह्मण का तेज जो है तो वो श्राप में उपयोग करता है, भगवान के संबंध में नहीं करता है। उसने कहा कि 7 दिनों में जिसने करा है उसकी तक्षक आकर वो काट लेगा, मृत्यु हो जाएगी, 7 दिनों की मोहलत। और परीक्षित महाराज आ गए तो सोचने लगे कि उन्होंने क्या किया, तो वो कहते कि हमने ऐसा क्यों किया, वो तो निर्दोष भाव व्यक्त कर रहे थे कि ऐसे हो ही कैसे सकता है। वो ये नहीं कहते कि मैंने नहीं किया है, लेकिन हम दैव योग से कर सके, इसलिए उन्होंने गुनाह स्वीकार कर लिया और तुरंत राजपाट छोट करके अपने बेटे जन्मेजय को दे दिया कि चलो बेटा मेरा समय आ गया है, निकलो। वो गुड बाय भी नहीं करने रहे, सीधे कपड़े इत्यादि निकाल करके सादा कपड़ा पहन लिया और गंगा के किनारे बैठ गए, जो शुक्रताल कहलाता है ना, शुक्रताल गई हो आप लोग जी, हैं? हाँ, वो आप मुरादाबाद बिजनौर के रास्ते पर जाओगे, गंगा के तट पर बिजनौर के नजदीक शुक्रताल आता है, जहां सुखदेव परीक्षित महाराज को ये 7 दिनांक भागवत कथा सुनाई, सही। तो ये पृथ्वी महाराज का उपदेश अपने वर्णाश्रम धर्म में काफी आवश्यक है और सभी भक्त की श्रेणी में आते ही अपने अध्यात्म की प्रगति की ओर ब्राह्मण वर्ग द्वारा ही कराते हैं। हम तो वैष्णव होते ये समझते हैं कि वो ब्राह्मण ऊंचा नहीं नीचा नहीं, सब सरीखे होते हैं, फिर भी ब्राह्मण होने का महत्व बताया जाता है क्योंकि समाज का मत्था कहलाता है। हाथ पांव कट जाते हैं, मत्था कटे, सब कुछ चला जाता है। तो जिस समाज में मत्था ही नहीं, मत्थे बिना की मुर्गी जैसा समाज चल रहा है, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य भी भक्तों को करना पड़ता है। ब्राह्मण का कर्तव्य भक्तों, इसीलिए दूसरी दीक्षा होती है, सही।
हरि बोल।
माता जी ब्रह्म भोजन खिलाएगी। कोई प्रश्न है? कर्तव्य के साथ या जिम्मेदारी जो फर्ज होती है, फर्ज में चूक होती है तो अवश्य लेना पड़ता है। बच्चों का दोष माँ बाप नहीं उठाते क्या?
किस लेवल पर ले,
या आधा माफ कर देते हैं क्या? भगवान का भक्त हो तो दूसरे के दोष भी उठा सकता है, क्योंकि उसकी मुक्ति जल्दी हो जाएगी, भगवान के पास जल्दी पहुंचेगा। कर्तव्य का दोष तो स्वयं भी डालते हैं। एक दृष्टि से देखें तो ये प्रश्न के साथ जो वो कहानी प्रभुपाद जी बारम्बार दोहराते थे कि एक साधु आशीर्वाद देता था, राजा के बेटे को आशीर्वाद दिया चिरंजीव, हाँ एक मुनि का बेटा आया उसको आशीर्वाद दिया मां जीव, अभी मर जा तू, हाँ एक भगत आया तो उसे कहते हैं साधु जीवो वा मरो वा तेरी इच्छा में, और एक कसाई आया तो उसे कहते हैं मां जीव मार मर थी तू नहीं मर न जी। तो इनके शिष्य अचंभे में पड़ गए कि हाँ गुरु महाराज ऐसे आशीर्वाद अलग अलग प्रकार के, हमारी तो खोपड़ी में कुछ गया ही नहीं, समझाओ। तो कह रहे हैं कि जब राजा का बेटा आया वो तो कामुक भाव से रजोगुणी है, अपनी कामना की इच्छा के लिए ही तो जिएगा, यानी कि उसके विपरीत उसके फल भोगने पड़ेंगे, जिम्मेदार रहेगा। उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीव बहुत लंबा आयुष्य तेरा हो और बहुत तो विकर्म पैदा कर और विकर्म से तेरी तुरंत अवगति फटाफट हो जाएगी। जितना लंबा जिएगा उतना तेरे विकर्म तेरे जल्दी खत्म कर देंगे। और मुनि का बेटा छोटी उम्र में तपश्चर्या कर रहा है, पिता के साथ साधना कर रहा है, वो मुक्ति चाहता है। जब छोटा बेटा निर्दोष होता है कोई उसका तो कर्म संचित होता ही नहीं, 12 साल के अंदर बच्चे निर्दोष कहलाते हैं, 12 साल के बाद ही वो दोषित होते हैं। दोषित क्यों? क्योंकि दूषित हुए, इसलिए मनोविकार से दूषित होते हैं, तब उसको जलाने की आवश्यकता होती यदि मर जाते हैं, नहीं तो कर्म जलाएंगे कौन, सही ना। तो ये मुनि का बेटा तपश्चर्या कर रहा है, छोटी सी उम्र में उसने तपश्चर्या सीख लिया है, यानी कि अपने शरीर को जानबूझकर कष्ट में रखता है क्योंकि आत्मा की उन्नति के लिए। तो अभी मर जा, बड़े होकर तुम मरने की क्या है, अभी मर जा तो तुझे अभी फायदा है। इसलिए मुनि के बेटों को कहा कि नहीं, तो अभी मर जा। भक्त आया, भक्त भगवान के लिए जीता है, यदि अपनी इच्छा से या दैव इच्छा से ये यदि मर गया तो उसकी भक्ति तो चालू रहेगी, यानी कि सेवा चालू रहने के लिए। वो दूसरा जन्म लेगा तो वो परवाह नहीं करेगा, आने दो दूसरा जन्म, हमारी सेवा चालू है तो हम निश्चित निर्भय है। तो जीते जी भी सेवा करता है तो मरने के बाद भी उसकी सेवा चालू रही, तो उसकी इच्छा में जिए या मरे, दोनों बराबर है उसके लिए। तो साधु मरने के बाद भी सेवा की ही भावना कर, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भवती अहितुकित्वई, ये साधु का लक्षण होता है। और जो कसाई है दूसरों को मारता है, यानी कि मृत्यु के समक्ष मृत्यु बुलाता है दूसरों का, तो यानी कि उसका रहना भी मृत्यु के दरबार में ही तो है, तो वो न जीता है न मरता है। कसाई की जिंदगी एक भूत की जिंदगी है, भूत न तो मरता है न जीता है, बीच में लटकता रहता है, हमेशा जो मृत्यु के सामने ही जीने का प्रयत्न करता है वो जिया बराबर है क्या? जिसके सामने मृत्यु हमेशा उपस्थित ही होती है, कसाई का तो धंधा है, तो क्या ये जिया है? मरा बराबर है। जीते जी जिसको मारने का ही प्रश्न होता है कि मरने से ही उसका निभाव होता है, तो वो निभाव कैसा? मरा हुआ निभाव। नारद मुनि में तो इतनी ताकत है कि ऐसे वाल्मीकि लुटेरा को मरा मरा करके राम का भगत बना दिया, क्योंकि अनायास ही कोई कर्म संजोग के अनुसार नारद मुनि आए, इन पर अनुग्रह किया, उसकी बातें समझने में आई उसकी, तो मरा मरा करते राम का भगत बन गया। तो कर्म तो संचित हमारा भी रहे दूसरों का भी, क्योंकि कर्म के भागी होते हैं, पार्टनरशिप। बेटों की वजह से पिता माँ बाप को भी कोसना पड़ता है, क्योंकि लगाव है, असर करेगा। मरे हुए के सूतक भी क्यों नड़ते हैं? क्योंकि लगाव है, इसीलिए भौतिक लगाव होने के कारण सूतक नड़ता है। कोई मर जाता है अपने परिवार में तो कोई छूते नहीं, कोई पकाता नहीं दो तीन दिन, सूतक नड़ता है, क्योंकि मरे की भावना जो है तो लटकती रहती है लगावों के साथ, तो संबंध में लगाव होता है। तो ये भी लगाव होने के कारण वो कर्म फल उसको बीच में लड़ता। मनोमन करनी चाहिए
भोग लगाना जैसे,
हाँ, लेकिन भगवान के विग्रह को छूने की आवश्यकता नहीं बताते। तभी सूतक होता है, और लेकिन वो 12वां-13वां जन्म के समय थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन मृत्यु तो होता है, 12वां-13वां करते हैं, जन्म दरमियान ही सूतक नड़ता है, या आगे पीछे थोड़े घंटे तक सूतक होता है। दूसरे दिन तो कर सकते हैं,
जैसे 12 दिन
या 10 दिन ऐसा लगता है। वो तो हाँ, तो अर्च विग्रह की सेवा बंद यानी कि दूसरों की, हाँ, वो अंतर में लगा सकते हैं, यानी कि पट ऐसे पार देने चाहिए, या भगवान को तो सूतक नहीं नड़ता ना, तो ऐसी सेवा दूसरों के पास करा लेनी चाहिए, खुद न करें, जो अपने निकट के परिवार के लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई मित्र को बुलाओ, भगवान की सेवा करके जाए। तो भक्तों को कहना, कम से कम नहीं हो पाती है तो हरि नाम तो हो पाता है ना, बस वो करते रहो। लेकिन वो भी आप 5 दिनों तक ऐसा सूतक रख सकते हैं, ज्यादा रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं। भगवान की सेवा दरमियान तो ये जो मृत आत्मा को अपनी सेवा में दृढ़ता और संबंध में इनके लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो उसका छुटकारा जल्दी हो जाएगा, 12वां-13वां की राह भी नहीं देखनी पड़ती। पिता थे फिर भी उसकी भावना अपने स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। उसका संग ही तो दुष्टों का था। दुष्टों का संग था ना वेण का। इनके पिता पर कितनी फरियाद आती थी, दुखी रहते थे। और एक लौता बेटा था, तो वो स्वयं कुछ नहीं कर पाए। सही, जैसा संग वैसा रंग।
पिता के गुण नहीं आए बेटे में, पिता के गुण बेटे में नहीं आए।
पूर्व कर्म में यदि वो लाभ उठा नहीं पाया, क्योंकि अन्य गुणों की प्राधान्यता ज्यादा होती है, तो सात्विक भाव पैदा ही नहीं होता। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, उसको अपनी इच्छा पूर्ण करने का मौका मिल गया, ऐसे दुष्ट इच्छा। और कोई